ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ सप्तम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 17, 18 और 19। बोर्ड में 19 है तो 19 को आवृत्ति करते हैं, फिर बाकी दो श्लोक भी पढ़ेंगे। सपतो असकृद विष्णुम् यद् ब्रह्मा परमाव्ययम् सूत्रो न जातु जिह्वायाम् नान्धं विवसतु स्तमः। तो श्लोक संख्या 17 से, क्योंकि कंटिन्यू है, उसका भी श्लोक अनुवाद पढ़ लेते हैं, फिर उसको पढ़ेंगे। श्लोक 17। एतद् वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने भगवत निंदयाबेनो द्विजस्तमसि पतितः। हे महामुनि, हम सभी भगवान की इस कृपा का कारण जानने के लिए उत्सुक हैं। मैंने सुना है कि प्राचीन काल में बेन नामक एक राजा ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निंदा की, फलस्वरूप सारे ब्राह्मणों ने उसे बाध्य किया कि वह नरक में जाए। शिशुपाल को भी नरक में जाना चाहिए था, तो फिर वह भगवान के शरीर में किस तरह लीन हो गया। श्लोक 18। दमघोष सुतः पाप आरभ्य कलभाषणात् संप्रति अमरसि गोविंदे दंत्रवक्रश्च दुर्मति। अपने बाल्यकाल से प्रारंभ से ही जब तक ठीक से बोल भी नहीं पाता था, दमघोष के महापापी पुत्र शिशुपाल ने भगवान की निंदा करनी प्रारंभ कर दी और वह मृत्युकाल तक श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता रहा। इसी प्रकार उसका भाई दंत बक्र भी ऐसी आदत वाले था। उसके बाद आज के श्लोक। सपतो असकृत विष्णुम यद ब्रह्मा परम व्ययम शित्रो न जात जिह्वायांग नांधंग विवसतो तमः। उसका शब्दार्थ इस प्रकार है, सपतो निंदा करने वाले शिशुपाल तथा उनके भाई दंतवक्र, असकृत बारंबार, विष्णुम भगवान विष्णु को, या जो ब्रह्म परमम परम ब्रह्म अव्ययम बिना किसी कमी के अपक्षय शून्य अविनाशी स्वित्र श्वेत कुष्ठ न नहीं जातः प्रकट जिह्वायाम जीभ में न नहीं अंधम अंधेरा विवसतु प्रवेश नहीं किया तमः नरक में। यद्यपि शिशुपाल तथा दंतवक्र दोनों ही परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु श्री कृष्ण की बारंबार निंदा करते रहे तो भी वे पूर्ण स्वस्थ रहे, न तो उनकी जिह्वा में श्वेत कुष्ठ रोग हुआ, न वे नारकीय जीवन को जीवन के गहन अंधकार में प्रविष्ट हुए। हम सचमुच इससे अत्यधिक चकित हैं। उसके तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, भगवद गीता 10वां अध्याय 12 श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण का वर्णन इस प्रकार किया है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान। आप परम ब्रह्म है, परम धाम तथा पवित्र करने वाले हैं। यहां पर इसकी पुष्टि हुई है, विष्णु यद ब्रह्म परम अव्ययम्, विष्णु ही कृष्ण है, कृष्ण विष्णु के कारण, इसके विपरीत नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म कृष्ण के कारण नहीं है, अपितु कृष्ण ब्रह्म के कारण है, अतएव कृष्ण परम ब्रह्म है, यद ब्रह्म परम अव्ययम्। ओम अज्ञानं तिमिरांध्यस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आप जो भी आज के प्रातःकाल इस भागवत सत्र में उपस्थित है, सभी को विशेष विशेष धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जब प्रद्युम्न मिश्र पुरी में प्रसिद्ध कुलीन ब्राह्मण थे, उन्होंने गए एक बार जाकर बोले कि मैंने आपके पास आया हूं, मुझे इसे पता चला कि आपको सार्वभौम आदि सब साक्षात ठाकुर विष्णु करके मानते हैं, कृष्ण करके मानते हैं, मैं आपसे थोड़ा कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं, मुझे बताइए। महाप्रभु तो है ही साक्षात, लेकिन जैसे उन्होंने पूछे प्रद्युम्न मिश्र ने, तो महाप्रभु तुरंत नम्र होकर के बोले, अरे पंडित प्रवर, आप पुरी के क्षेत्र इस क्षेत्र के प्रधान ब्राह्मण है, पंडित है, तुरंत प्रणाम किए। महाप्रभु प्रणाम करके बोले, देखिए मुझे तो इतना पता है, जारा कृष्ण कथा रुचि सही भाग्यवान। बोले जिन जो कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं वो तो भाग्यवान है, और तुम्हार कृष्ण कथा रुचि तुम ही भाग्यवान, तुम कृष्ण कथा सुनना चाहते हो तुम परम भाग्यवान हो। मतलब देखिए बातचीत कैसे करते हैं। महाप्रभु के शिक्षा में दो चीज ध्यान देना है, पूरे चैतन्य चरित में महाप्रभु के व्यवहार इतने कुशल प्रीतिपूर्वक व्यवहार करेंगे, इसी से ही आधा जीत जाएंगे, व्यवहार से, इतने कुशलता से व्यवहार करेंगे नम्र होकर के, और जो बातचीत करेंगे परम युक्तिपूर्ण, प्रीतिपूर्ण व्यवहार, युक्तिपूर्ण बातें। तो बोले कि तुम परम भाग्यवान हो, लेकिन क्या कहूं, दुख की बात है, मैं अपदार्थ हूं, मायावादी सन्यासी हूं, दंडी सन्यासी हूं, अब मैं कहां कृष्ण के बारे में जानता हूं, तुम गलत जगह पर आ गए। आप प्रद्युम्न मिश्र का आंख निकालो, देख रहे हो मैं दुनिया में सुना कि आप कृष्ण ही हो, सार्वभौम भट्टाचार्य जो दिग्गज पंडित वो भी इसे कह रहा है, आप बोलते हैं कि तुम गलत जगह में आ गए, लेकिन आप भाग्यवान हो, सुनने की इच्छा करते तो मैं बताता हूं, मुंह किससे सुना हूं, मैं जिससे सुना हूं आपको रिफर करता हूं, वहां जाइए। बोले रामानंद राय से मैं सुना हूं, आप वहां जाइए। आप ब्राह्मण श्रेष्ठ थे प्रद्युम्न मिश्र, और रामानंद राय है शूद्र, नौकरी कर रहा, सुन करके इसे नाक उठा क्या आप यार, उसके पास मैं जाऊं, अब भगवान है, किस प्रकार से उनको सुधारना चाहते हैं। तो मैं इसलिए प्रसंग कहा कि आप लोग का सुनने में इच्छा है, इसलिए आप सब भाग्यवान है, धन्यवाद के पात्र है। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है भागवत का, आप रेगुलर सुनते होंगे, मैं तो प्राय कई महीने के बाद आज आया हिंदी के सत्र में, तो इसलिए ये सत्र चल रहा है कि युधिष्ठिर महाराज का राजस्व यज्ञ की बात है। एक्चुअली सुख परीक्षित संवाद है। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी को एक प्रश्न पूछ दिया, डाउट कि भगवान सुखदेव जी आप पे जो अभी तक मैं समझ में आया, आप जो बात कर रहे हैं कि भगवान ने इसी उसको बद्ध के, ये लगता है कि भगवान पार्शियलिटी कर रहे हैं, पक्षपातिता कर रहे हैं, ये देवताओं के साइड लेते हैं, असुर को मार रहे हैं, ये भगवान इसे कैसे कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं। तो भगवान के ऊपर जो पक्षपातिता दोष था उसको दूर करने के लिए अब सुखदेव जी महाराज ने उनके एक आख्याय का सुनाने जा रहे हैं। बोले ऐसा बात नहीं है, ये सब गुण के हिसाब से भगवान के स्थिति मालूम होता है, लेकिन आप में घटना एक रिलेशन डायरेक्ट रिले करके बताता हूं जो हुआ था। बोले ऐसी घटना हुआ था, कैसे वो क्या हुआ था ना, पांडुपुत्र महाराज युधिष्ठिर विशेष राजस्व यज्ञ कर रहे थे। वे राजस्व यज्ञ में भगवान स्वयं थे, भगवान कृष्ण ही मौजूद थे, उनका अग्र पूजा हो रहा था, अग्र पूजा होने का प्रस्ताव आया, भगवान थे और हजारों हजारों बड़े बड़े ऋषि मुनि राजाओं का भरमार था। राजस्व यज्ञ 100,000 नरपति नहीं होने से राजस्व यज्ञ नहीं हो सकता, 100,000 राजा का उपस्थिति चाहिए तब राजस्व यज्ञ हो पाएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। जब एक कम पड़ गए तो पूरा नहीं होगा, ये कंडीशन है, 100,000 राजा होना चाहिए। तो इतने राजा और इतने राजा आएंगे तो उनके भाई पार्षद राजा अकेले थोड़ी ना आते हैं, 10-20 उनके साथ आगे पीछे चलने वाले होंगे प्रोटोकॉल। रो भी आए और ऋषि मुनि ब्राह्मण के भरमार आए, उनके बीच में सबसे प्रथम सम्मान्य अग्र पूजा के प्रस्ताव उठा और सब बड़े बूढ़े मिल करके तो कृष्ण को सिलेक्ट कर दिए, उनको पहले पूजा करना है। अब ऑब्जेक्शन तुरंत खड़ा हो गया, यद्यपि एक ऑब्जेक्शन पार्टी था दुर्योधन पार्टी, वो बोल रहे थे लेकिन खड़ा हो गया शिशुपाल, उसको सहन नहीं हुआ, उठ करके गालियां देने लगा। कृष्ण है खड़े, कृष्ण के सामने कृष्ण के भक्त ऋषि ब्राह्मण मुनि पूरे लाखों राजाओं के बीच में खुल्लम खुल्ला गाली दे रहा था, ऐसे दिखा करके बोल रहा था, अंगली दिखाकर, भगवान खड़े सुन रहे थे, देख रहे थे, वो पार्टी दो पार्टी अमर से बढ़ रहा था। इसी में भगवान तो बोले थे, उनके मां को भी बोले थे, शिशुपाल की मां को, उनके मौसी लगेंगे, बोले थे देखो ये मैं क्या करूं, मेरे भाई है लेकिन है उनका, मेरे हाथ में है उनका बद्ध, नहीं नहीं इसी मत मानना पे यार, तूने बुआ होगा उनका। बोले बोले नहीं मैं आप कहते तो उसमें गिनती करूंगा, सेंचुरी हो जाने से मैं आउट कर दूंगा, सेंचुरी मारने दे उनको। अब उन्होंने गिनती कर रहे थे और जैसे 100 पूरा हुआ गाली, भगवान ने इसी को चक्र अपना और सबके सामने दीन दे ऊपर बिल्कुल प्रेजेंट भरी सभा में उसका सर कट गया, धड़ाम से सर कट गया, सबके देखते थे, गाली दे रहा था, मुंह में गाली निकल रहा था, सर कटा, ऐसे नहीं कि मरते पहले थोड़ा हाथ पर जुड़ दे, ना ना ना, गाली के साथ सर कटा उसका, मैंने कुछ गाली अब निकल गया, निकल नहीं पाया बाकी था, सर कट गया उसका, नहीं तो सर जोड़ा होता तो और कुछ गाली देता हुआ पूरा करता, तो सर कट गया, सर कट गया तो सब आश्चर्य देख रहे हैं और उनके पार्टी के सपोर्टर जो थे वो भी देख रहे हैं, अरे अब सभी दोनों तरफ देख रहे हैं, गला कट गया सबके सामने, बिल्कुल भरी सभा में इतने लोग प्रेजेंट थे, अब गला कट गया तो कट गया, ये तो बड़ी बात नहीं, भगवान तो सर्वसंत मार दिया, मर्डर कर, क्षेत्रीय लोग कैसे मर्डर फटर करते हैं, मारपीट उनके बड़ी बात नहीं, तभी जमाने में ये चलता था, लेकिन आश्चर्य ये हुआ वो गला तो उसका कटा, वो गला किस लिए कटा ना, उनको गाली देते देते निंदा कर रहा था इसे इसे करके सबके सामने, अति कटुवाक्य कह करके निंदा कर रहा था, इसी वजह से उनका गला काट दिया गया, और गला कटा तो क्या परिणाम हुआ, ये सबसे आश्चर्य की बात है।
अब निंदा कर रहा था उनको दुख मारा, ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई आपको गाली दे तो आप भी चपड़ा लगा देंगे छठा उसको, नॉर्मल बात है। लेकिन ये इतना कटु वाक्य खाकर निंदा कर रहा था, भगवान ने उसके चक्र से गला काटा, गला कटते ही आश्चर्य अभी हुआ, भरी सभा में सभी देख रहे हैं, ब्राह्मण ऋषि राजन्य वर्ग सब देख रहे हैं, उनका आत्मा निकला, देख रहे थे कि तेजस्वी लाइट का एक चमकीला पदार्थ निकला, निकल करके भगवान के चरण में आके मंडराया, परिक्रमा किया और उनमें लीन हो गया। यही सबसे बड़ा आश्चर्य। ऋषि मुनि तो देखकर आंख फाड़कर देखे, बोले हाउ कैन इट पॉसिबल, ये हो कैसे सकता है, हे बदमाश गाली दे रहा था। अब उनका ऐसे हुआ तो बाकी को पूछने में युधिष्ठिर महाराज खड़े हो गए, क्योंकि वो परम भक्त थे, उनको समझ में नहीं आया युधिष्ठिर महाराज ममेरा भाई थे कृष्ण के, और कृष्ण के बारे में उनसे बढ़कर कौन ज्यादा जानता होगा, सख्या धर्मराज है, संबंध में भाई है, कितने बार मिले, बातचीत किए, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ में, उनको दूत के तरह यूज किया, अपने ड्राइवर करके कितने प्रकार के निकट संपर्क कितने यूज किए, तो वो कृष्ण को कितने भली भांति जानते होंगे। और बाकी बड़े बड़े व्यास आदि ऋषि मुनि सब बैठे थे, सभी जानते हैं, लेकिन कृष्ण ऐसे अज्ञेय है, नाम विदुहु सुरगणहा प्रभवंती न महर्षयः, ना देवता ना ऋषि ना महारभय, कोई नहीं जान पाए, कितना जानेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज परम आश्चर्य होकर खड़े होकर बोले कि ये कैसे हो सकता है, ये बदमाश हम देख रहे हैं उसका आत्मा भगवान में सहजी मुक्ति प्राप्त कर गया, भगवान में प्रवेश कर गया, अरे ये बड़े बड़े अनन्य भक्तगण भी कितने प्रयास करने पर भी जो दुर्लभ है, जिसको प्राप्त नहीं कर पाते, अब भाई की ज्ञानी ध्यानी योगियों की क्या बात कहें, अरे ये गाली देते देते, आश्चर्य की बात है ये आश्चर्य वो प्रकट कर रहे थे, बाकी जितने ऋषि मुनि थे सब हाथ उठा, बोले यस हम भी यही जानना चाहते हैं क्या रहस्य है, सबका मन में प्रश्न उठा था। तो बीच में युधिष्ठिर महाराज जानते थे ये सर्वज्ञ ही समाधान कौन कर सकता है, कि नारद जी बैठे थे, नारद मुनि को प्रश्न किए युधिष्ठिर महाराज, और सारे ऋषि मुनियों को पता था, ये इनको पता होगा, ये आज तक न्यूज वाले हैं, उनके पास सारे इंफॉर्मेशन रहता है, वो जरूर बताएंगे इनका रहस्य क्या है। तो नारद जी के पूछ रहे हैं किसके बारे में, ये जो आश्चर्य को दूरीभूत करने के लिए आश्चर्य यही है कि हाउ कम कैसे संभव हुआ, अरे गाली दे रहा था। अब ये जो आश्चर्य के प्रकट किए उन्होंने, लगभग ये 6 श्लोकों में वो आश्चर्य को प्रश्न कर रहे हैं जानकारी कि ये क्या रहस्य बताओ, ये परम आश्चर्य का रहस्य बता रहे हैं। तो ये सीक्वेंस आगे भी 2 श्लोक तक यही आश्चर्य की बात चलेगा, उसके बाद 22 नंबर में फिर नारद जी बताएंगे। तो ये आश्चर्य की बात पूछ रहे हैं, तो हमारे पास जो 3 श्लोक आया और काल से आश्चर्य में बात पूछ रहे हैं, बोले हम सब पूछना सुनना चाहते हैं, प्लीज बताइए, केवल मैं अकेला नहीं, ये सारे स्टूडेंट सभी इतने सभी भी सुनना चाहते हैं, ये कैसे संभव हुआ। नारद जी नॉर्मल खड़े हैं कि असंभव क्या है इसमें, बाकी तो बोले कैसे संभव हुआ, उसका आश्चर्य के प्रकारण बता रहे हैं। बोले एक तो हम इसलिए आश्चर्य कर रहे हैं कि जो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि हम पहले सुने हैं ऐसी घटना का क्या परिणाम होता है, इस प्रकार के कोई कार्य करे उसका परिणाम क्या होता है पता है हमको, भैया आप दूसरे को सामने पब्लिकली गाली दो तो क्या मिलेगा, तो सबको पता है, हाँ कोई समर्थवान आदमी हो दो गाली देकर तो देखो कैसे गाल लाल कर देता है ना नहीं। अब आग में हाथ लगाओ तो क्या होगा पता है, जलेगा। तो ये मैं सुना हूं कि ऐसा बात नहीं कि कई कई नहीं जलता, बोले मैं इतिहास में सुना हूं, बेन करके राजा थे अंगपुत्र बेन, वो नास्तिक थे, वो ईश्वर निंदा आदि किए नास्तिक बात के कारण, और उनको ब्राह्मण ने जबरदस्ती नरक में डालवा दिया, उनके परिवार जितने जिंदा डाल दिया जाना पड़ेगा नरक में, क्यों कारण था, बोले भगवत निंदा के, ईश्वर निंदा नास्तिक बात कारण उसको डाल दिया नरक में,
जबरदस्ती नरक में डाले उसको, नरक गति हुआ उसका, दुर्गति कर दी। और ये उसमें बारे में क्यों आश्चर्य? बोले ये तो थोड़ा समझ लिया किया था, राजा हो पोस्ट पोजिशन में आकर किया था। अरे ये तो कड़ा भाषण, जब से तोतली बोली बोला ना, जब से अ आ क क शुरू का, तब से गाली देना शुरू किया। ऐसे नहीं कि भाई ए फर आपुल बी फर बैट ऐसे बोल दे, ना 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 ना, जब से अ आ सीखा तब से गाली देना ही सीखा। पता नहीं उनको टीचर ऐसे पढ़ाए कि क्या, पता नहीं कि पढ़ करके पहले जन्म से पढ़कर आया था, इसलिए कड़ भाषणात बोलते। कड़ भाषण मतलब जिनसे जब से बोली निकला उनका तब से गाली दे रहा है, और कंटिन्यूअस अभी मरते दम तक, अभी गला कटा तब तक छोड़ा नहीं गाली दे रहा था। इसलिए असकृत, सकृत मतलब एक बार, असकृत मतलब एक बार नहीं, एक आध बार हो गया कोई बात है, नहीं 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 नहीं, तू दे ही रहा था जन्म से अभी तक मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक छोड़ा ही नहीं है काम, कंटिन्यूअस ये काम करता रहा। ये परमाश्चर्य बात है, कोई दो चार बार कर लेता है, बैंड थोड़ा समय किया तो जब जिंदा नरक में डाल दिए उसको, अरे ये तो जन्म से ही अब तक कर रहा था, जन्म से अब तक कर रहा था, केवल अकेला नहीं भाई के साथ, अकेला कर रहे थे, नहीं भाई के साथ मिल करके दोनों कर रहे थे, शिशुपाल दंत वक्र दोनों खूब मिलकर करते। कभी यो बोल 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 कर दम बोल बोल कर हो जाना, थोड़ा रेस्ट लेता हूं तो वो उड़ कर बोलता, उठ बोलता था वो दम लेता, फिर उठ कर बोलता, कंटिन्यू छोड़ते नहीं दोनों आप पकड़ कर गालियां देते थे तो बोलते हैं कि उन दोनों का जब इतने दे रहे थे, वो बहन राजा का जब ऐसी घटना हुआ तो उनको तो होना चाहिए था, अवश्य जाना चाहिए था। दूसरी बात आज के श्लोक में कहते हैं, ये दमघोष सूत्र की बात कह दिए कि जैसे ये तो बारंबार कर रहा था, और आज श्लोक कहते हैं कि और आश्चर्य की बात ये है, क्योंकि आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको पता है, करंट के बारे में, किसमें 1044 वोल्ट के कोई तार में करंट आजकल जाता ना, क्या बोलते हैं उसको, जो हाई टेंशन हो यार, हाई टेंशन हो यार, को बहुत ऊपर ऊपर लेकर जाते हैं ताकि किसी को कॉन्टैक्ट में ना आए, तो हाई टेंशन वायर कहीं गिर पड़ा, कहीं जाकर उसको अनगात से पकड़ लिया, कि कैसे पकड़ लिया कि ऊपर से किसी गिर गया हाई टेंशन में पकड़ लिया, क्या होगा आपका क्या अनुमान क्या होगा, बांफी हो जाए वहीं से लटक कर सर झट खत्म है ना, सुहा हो जाएगा। आजकल स्मशान में सरकार ने अभी नया करते हैं, लकड़ी फकड़ी कहां से लाएंगे, लकड़ी मिलता नहीं, ऐसे इलेक्ट्रिक दाह संस्कार होता है तो डालो स्विच बटाओ खत्म, आस निकल जाएगा। हाँ इतना हाई वोल्टेज डालते हैं, और जितने दुनिया में अभी तक वैज्ञानिक हाई वोल्टेज करंट निकाले, इस सबसे सुपर हाई वोल्टेज ये कौन ना, साक्षात परम ब्रह्म है। ये कोई दूसरा को गाली नहीं दे रहा था, किसको गाली दे रहा था, जिसको निंदा कर रहा था, ये सुपर हाई वोल्टेज, अरे उसको हाथ लगाए और हाथ ना चले, हाउ कैन इट पॉसिबल, ये बड़ी आश्चर्य की बात। बोले ये परम ब्रह्म है, अव्यय है, परम ब्रह्मता कभी है, पर करंट कभी नहीं चला गया, अभी खाली है, करंट भी ऑन होने से कभी आएगा, बोलते ना अव्यय मतलब कभी करंट फेल नहीं होगा, कंटिन्यूअस अपक्षय शून्य, कभी ऐसा हो नहीं सकता कि थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, पावर ऑफ हो जाना आपके भाषा में, लोड सेटिंग, लोड सेटिंग मतलब तो चला जाए, बोले ऐसा हो नहीं सकता। अरे भगवान का एक छोटा सा बल्ब टांग दिए सूरज, उसका लोड सेटिंग होता है नहीं। अभी तक दुनिया में जितने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है कोई बता नहीं सकते उनका होल्डर कितना है, कितने पावर का बल्ब है, वायरिंग कहां से आया, कुछ पता नहीं उनको, जल रहा है सब देख रहे हैं, हमारे बाप के दादा के पूर्व पुरुष के अमल से जल रहा है, वो जल रहा है, हम थोड़ा सा हिल जाने से स्वेटर, थोड़ा सा ये होने से पंखा एसी चलाएं, ये क्या वोल्टेज का बल्ब है पता नहीं, और नेवर एवर कभी लोड सेटिंग हुआ नहीं, और साक्षात भगवान के शक्ति से इस, और साक्षात भगवान ये अव्यय परम ब्रह्म, उनको उनको गाली देकर हाई टेंशन हो यार को पकड़ करके उसको कुछ ना हो, परम आश्चर्य बात है ना, नहीं कोई भी ले मैन बोलेगा हाउ कैन इट पॉसिबल, हाई टेंशन हो यार और करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं कि करंट स्विच ऑफ हो गया, करंट फ्लो हो रहा है, और करंट हो रहा करके प्रमाण क्या ना, अरे पहले ये दूर से 200 मीटर दूर से थोड़ा ऊपर उठ गया करके चल गया बेन राजा। ये हम देखे हैं सुने हैं और वो बिल्कुल पकड़ा है, ये हाई टेंशन हो यार, कुछ हो नहीं रहा है। क्या होना चाहिए था? अरे क्या होना चाहिए था, जिसके द्वारा जैसे हाथ में डाला तो हाथ ही तुरंत खत्म चल जाना चाहिए, इमीडिएट। उसके बाद तो शरीर, पहले जो माध्यम है जो टच किया जो अंग, वो अंग तुरंत जल जाना चाहिए। तो वो गाली दे रहा जिह्वा से, बोले जिह्वा श्वेत कुष्ठ होकर गिर जाना चाहिए। ये साक्षात्व्य परम ब्रह्म भगवान की निंदा करेगा जो जिह्वा में कटुवाक्य कहेगा, वही प्रमाण है कि जिह्वा तुरंत गिर जाए, श्वेत कुष्ठ कुष्ठ होकर गिर जाए। ये हुआ है, यही प्रमाण होना चाहिए उसका, ये हुआ नहीं। और दूसरा, अंधा नरक में जाना चाहिए, और नरक जाएगा कि तो भगवत प्राप्ति हो गया उसका। ये बड़े आश्चर्य, बिल्कुल ऑपोजिशन। कहां उसके जिह्वा पे श्वेत कुष्ठ होकर के गिर जाना चाहिए, और स्वयं महा अंधतम नरक में जाना चाहिए। और ये गाली बड़े टेम्पर से दे रहा था, जिह्वा में कुछ ताकत था, और वासुदेव की प्राप्ति हो गया, सहज मुक्ति हमारे सामने देख रहे हैं खुल्लम खुल्ले। आश्चर्य की कोई सीमा नहीं, ये कैसे हो सकता है? देखिए, ये भगवान के बारे में पहले बताया, युधिष्ठिर महाराज हम जैसे एरे गेरे तो है ही नहीं थे, भगवान के ममेरे भाई है। केवल भाई नहीं थे, क्या नहीं थे उनके, भगवान अपने घर गृहस्थी छोड़कर कभी माने पांडवों के पास, उनके पास आते हैं हस्तिनापुर में और पंच पांडवों के पास, तो भूल ही जाते हैं। तब तो फोन था नहीं, अगर होता तब भी भूल जाते हैं फोन कॉल करने के लिए, घर पर को पूछते ही नहीं, महीना दिन सालों भर रुक जाते हैं उनके साथ में। इतने संबंध था उनका, इतने निकट संबंध था पांडव के साथ। पांडव के पास आ गए, पांडव को विपत्ति सुने, भगवान को कहीं डाइवर्ट करना है माइंड, तो उनको बोल दो कि अरे पांडव के ऊपर विपत्ति है, भगवान तुरंत अरे ऐसा तुरंत निकालेंगे चल पड़ेंगे। इतने अटैचमेंट था पांडव के प्रति, पांडव का कोई विपत्ति कोई परेशानी सुनने से भगवान घर गृहस्थी चढ़ भाग जाएंगे, विदाउट रिजर्वेशन चलाएंगे। हाँ, चाहे बुकिंग टिकट मिले ना मिले, गाड़ी रिजर्व करके आ जाते थे, इतने उनका अटैचमेंट था पांडव के प्रति। तो वो पांडव के जो महान है धृतराष्ट्र, सॉरी युधिष्ठिर महाराज, वो आश्चर्य होकर के देख रहे हैं कि कैसे हुआ, किसके बारे में, कृष्ण के कृपा के बारे में। ये कृष्ण है कैसा, कैसे अद्भुत कृपा है उसका, क्योंकि कृष्ण के कृपा के बिना कृष्ण में कोई लीन नहीं हो सकता क्या। वासुदेव प्राप्ति हो जाए, वासुदेव को पता ना चले, ये वासुदेव का हाथ पूरा है उसके पीछे, उन्हीं को परिक्रमा करके उनमें चला गया। बोले ये कैसा आदमी है यार, अरे हमारे भाई है हमारे साथ, इतने हम नहीं समझ पा रहे कैसे संभव हुआ। और आश्चर्य की बात, अब युधिष्ठिर महाराज जो समझ नहीं पाए, वो कृष्ण ही बैठे थे, ऐसा नहीं कि ऑप्शन थे उनके बारे में, कृष्ण बैठे थे उधर, ऋषि मुनि सबके सामने उनको बोलते यार ये कैसा कृपा किया उन्होंने, ये आज ही किया ना, पहले भी ऐसा उनका स्वभाव है पहले भी ऐसा कुछ कर रहे हैं ना, कि क्या समझ। अब जब युधिष्ठिर महाराज उपस्थित, बड़े बड़े ऋषि मुनि मंडली नहीं समझ पाए, आप और हम समझेंगे, गोबर गाय के गोबर ही नहीं और किसी का गोबर होंगे, क्या समझे भगवान को हम लोग, है ना। नहीं अब इस बात पढ़कर सुन करके थोड़ा बहुत भेजा में जाए तो, नहीं तो क्या हम के भगवान क्या जाने। वो परम आश्चर्य करके पूछ रहे हैं कि कैसे संभव, क्यों, क्योंकि ये चौथा श्लोक में वो कह रहे हैं। तो आश्चर्य के प्रकरण प्रकट करते करते बोलते हैं कि ये हुआ कैसे नहीं, उसका जिह्वा में श्वेत कुष्ठ क्यों नहीं हुआ, वो ऐसे महान घोर नरक को क्यों नहीं गया, होना तो ही चाहिए, प्रमाण भी है, बेन में गया, और नहीं कि थोड़ा बहुत क्या, दमघोष स्वतः कड़भाषणात, अरे जब से जिह्वा उनका शक्ति पाया बोलने का तब से गाली दे रहा है असकृत। अब परिणाम इसे बिल्कुल उल्टा। अब उसके बारे में और भी आश्चर्य दो श्लोक कहेंगे, फिर नाराजी ने उत्तर बताएंगे हम उसे। लेकिन ये जो परम आश्चर्य की घटना घटा, ये केवल आश्चर्य की बात युधिष्ठिर के मन में था, ऐसी बात नहीं कि इस श्लोक प्रकरण से पता चलता है कि जितने उपस्थित बड़े बड़े ऋषि मुनि थे सबके मन में भी डाउट था। मतलब केवल युधिष्ठिर महाराज भगवत तत्व तो नहीं जानते, जानते थे नहीं समझ पाए, लेकिन ये किसी ने भी समझ पा रहे, बोले कैसे हुआ भैया, ये कैसे संभव है, भगवान उनको मारे और उनको तारे, अरे ये कैसे होगा। किसी को गुस्सा करके कोई मारता है ना, मारने के बाद उसको और भी कोई अधोगति करना चाहता है, गुस्सा नहीं कम होता। तो इसी को यही बड़े आश्चर्य की बात है। तो उसका मतलब कोई अगर भगवान या भगवत तत्व के भगवान की कोई चीजों की कटुक्ति करे, निंदा करे, तो उसका परिणाम के बारे में सबको पता था, युधिष्ठिर महाराज को भी और ऋषि मुनि सबको पता था। नहीं पता था आश्चर्य थोड़ी ना करते, उनको पता था कि कोई भगवत निंदक हाई टेंशन हो यार, कोई पकड़ के आओगे, सबको पता था, आपको भी पता है ना, नहीं कोई छोटे बच्चे तो है ही नहीं जिनको करंट के बारे में कुछ नहीं पता, वो भले कुछ करे लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं जानते, वो बोले हाई टेंशन हो यार बाबा, मोर देन 1000 किलोवाट की करंट फ्लो कर रहा है, वो कैसे। तो वो उसके बारे में क्या होना चाहिए परिणाम उनको ज्ञात था। सारे उपस्थित सभा वृंद को, ऋषि मुनियों को, युधिष्ठिर महाराज पता था कि ऐसे व्यक्ति जो अव्यय परम ब्रह्म को कोई कटुक्ति करे को क्या होना चाहिए रिजल्ट, ये उनको पता था। और वो कुछ हुआ ही नहीं, हो गया उल्टा उनके सामने, यही परमाश्चर्य की बात है। अब ऐसे होना चाहिए ऐसा कोई बात है ना, हाँ कोई भगवत निंदा या भगवत तत्व कुछ इसे अपकर्ष करे तो उसका क्या परिणाम होता है, एक उदाहरण हम देखेंगे। आप हरिदास ठाकुर के नाम सब जानते होंगे, चैतन्य महाप्रभु के लीला में नामाचार्य थे, तो मुस्लिम के घर के बच्चे, लेकिन आपने धर्म थोड़ा छोड़ करके आ गए इस धर्म में, हर कृष्ण जप करने लगे। उनके नाम में एक बार कंप्लेन हुआ था और उनको पकड़ कर ले गए, हिंदू लोग ही कंप्लेन किए, बोले ये क्या है जप करे, और तो मुस्लिम काजी के पास ले गए, तो काजी उनको अपने अपने जो मुल्ला ना, मुल्ला बोलते हैं ना, मुल्ला वंगर को सब उनके पंडित को मुल्ला बोलते हैं, उस कुछ उनके पंडितों के सामने बोले हरिदास को, बोले देखो हरिदास आपने उर्दू में बात किया, जो भाषा में बात करते होंगे अपने भाषा में, कि पता नहीं बंगाली भाषा बोलते हैं मुस्लिम लोग, तो बांग्लादेश में तो बंगाली बोलते हैं, उर्दू नहीं बोलते। तो बोले कि अरे हरिदास जी आप इतने उच्च पवित्र कुल का है, मुसलमान कुल का है, ये तुच्छ हिंदू जाति में चला गया तूने, अरे हिंदू को देखने से हम सवस्त्र स्नान करते हैं, उस दिन भात नहीं खाते। ये इतने छोट जाति है, हम कितने पवित्र है, गोमांस खाते हैं, कितने प्योर हैं हम लोग, और आप। उनका समझ में इसे कह रहा था। तो जो भी हो, तो एक घटना हुआ हरिदास जी के साथ में, तो वो जो काजी लोग ने उनको खूब समझाए, लेकिन हरिदास जी माने नहीं, बोले नहीं मैं तो करूंगा, चाला ईश्वर सब एक ही बात है। वो उनको सब तो मुल्ला लोग गुस्सा हो गए, तो बोले मानेंगे नहीं, नहीं मानूंगा, बोले शरीर को आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मारेंगे तो मरने के में डर नहीं मिले, बोले नहीं मरता भी नहीं डरता भी नहीं। अब बोले कि बोले उसको दंड देना चाहिए। अब ओ काजी बोला कौन सा दंड देंगे बताओ आप लोग, बोलो, बोला सर ऐसे करते हैं, ऐसे दंड विधान होना चाहिए कि पूरे इस राज्य क्षेत्र में कोई भी इसे गलती ना करे, ऐसे खतरनाक पनिशमेंट हो जिसको सुन करके कतरा जाए लोग, कोई सोचेंगे नहीं इसे गलती करने के लिए। बोले बताओ फिर क्या दंड, बोले उनको पैर को बांध दो, हाथ को बांध दो, पैर को बांध दो रस्सी में और उसको खींचो, चार आदमी पैसा रेंट दे करके मतलब पेमेंट करके चार आदमी रखे, दो साइड से दो हाथ में पकड़ पकड़ के पीटे, उनको दम लेंगे, फिर दूसरा दो आदमी फिर पीटे, कंटिन्यूअस पीटते रहे, उनको पैर बांध करके घिसटते जाओ। और पीछे रोड भी नहीं था जैसे रगड़ मिट्टी गई सब उसमें घिसटते घिसटते लेके जाना और पीटते जाना। हमारा ये पूरे सब डिविजन में कस्बा में 22 मार्केट है, वो सारे मार्केट अंदर घिस घिस कर पीटते रहना और मर जाएगा, मर जाए तो फिर जहां मर जाएगा वहीं लाकर उसको फेंक देंगे। जब तक नहीं मरेगा तब तक कंप्लीट करना है कोर्स 22 बाजार। बाजार में क्यों लेंगे? क्योंकि बाजार में भीड़ भड़का है, लोग हैं, लोग देखेंगे बाप रे बाप। आप किसी के ऊपर मार पड़ता देखने से हमारा छाती दहल जाता है और वो खींचेंगे पैर को, पूरा शरीर चमड़ी घिस गया होगा, रक्त बह रहा होगा और वो चिल्लाता होगा, फिर भी घिसते होंगे उसको, घिसट घिसट के ले जाते होंगे, ऊपर से दो हाथिया पीटते होंगे उसको। कौन देख करके संभाल सकता? कौन सज्जे कर सकता? कोई काष्ठ पाषाण द्रवीभूत हो जाए, इत कठिन ऐसे निष्ठुरता। लेकिन उन्होंने बोले ऐसी दंड दो ताकि जो देखेगा कभी नहीं सोचेगा बाप रे बाप इतने खतरनाक पनिशमेंट, हम ऐसा कभी करेंगे नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके कारण ओ इस दिए ओ आदमी खींचे, घिसटते घिसटते लिए और पीटते रहे पीटते रहे। भाई एक दिन दो दिन तीन दिन पूरे 22 मार्केट घुमाए, तीसरा दिन तक वो हरे कृष्ण चप रहा था, मन नहीं रहा था। वो पीट पीट करके उनका उनका हाथ मसाज दर्द करने लगा, चारों आदमी के हाथ दर्द करने लगा। अब देखे कि 22 बाजार कंप्लीट होने जा रहे हैं, बोले हम मर जाएंगे, हमको राजा मार देगा, तू तो मरेगा नहीं। बोले तुमको हरे कृष्ण बाबा, तू नहीं मरेगा, हमारा बाल बच्चे हैं, हम मरेंगे। क्यों ना राजा मार देगा, तू मर नहीं रहा। हाथ जोड़ के प्रार्थना की, बोले तू पीटने से नहीं मरता, तू को पीर होगा लगता है। तो बोले आप लोग रोते हैं, मर जाओ ना, कृपा करके मर जाओ। तो हरदास ठाकुर बोले ठीक है मर जाता हूं। हरदास ठाकुर फिर आपने समाधि में चले गए, अरे तो खुश हो गए, बोले बाबा बहुत अच्छा है, कृपा किया। बजे तब उठा उठा कर लेकर गए दादा के पास, मर गए क्या करें। तो बोले माटी तो मुसलमान लोग क्या करते हैं, कबर देते ना, कबर दे दो। नहीं मुल्ला बाबू, सदगति हो जाएगा। जो अच्छे खासे मुस्लिम होते हैं, जाति मुस्लिम, उनको जो ये दे देते उनका परलोक सुधर जाता है, कबर जाएगा तो आपने गति सदगति हो जाएगा। ये नहीं देंगे उसको, ये मुसलमान थोड़ी ना था, इतनी बड़ी उसको संस्कार करेंगे कबर देंगे, नो नो नो, थर्ड क्लास है। बोले तो फिर जला देते हैं। अरे जलाने से हिंदू की गति प्राप्त हो जाएगा, हिंदू लोग तो कुछ तो करते हैं, आग में जलाने से हिंदू की गति प्राप्त हो जाएगा, दफना देने से मुसलमान की गति प्राप्त हो जाएगा। बोले फिर फेंक देते हैं। बोले जीहू आदि होते हैं उनको फेंक देते। बोले नहीं, उसका गति प्राप्त, कोई गति नहीं मिलना चाहिए उसको, दुर्गति होना चाहिए। सब मिलकर के बिल्कुल डिसाइड किए, फूल वोट में डिसीजन किए, उसे गंगा में फेंक दो। वाह रे वाह, उनके शरीर के लेकर गंगा में बहा दिया जाए, ये सबसे महादुर्गति। आप और हम जानते हैं, शास्त्र में बताया गंगा स्पर्शन मुक्ति, गंगा दर्शन मुक्ति। अरे मर जाने के बाद भी अस्थि को लाकर गंगा में बता, अरे अस्थि क्या, हमारे भागवत प्रमाण है, मर गए थे कितने पीढ़ी में, 3 पीढ़ियों के बाद में उनके आस के उनके जो भस्म के ऊपर गंगा जल स्पर्श किया, उनके उद्धार हो गया है ना, निसागर सागर पुत्रों का। और वो दुर्बुद्धि डिसाइड किए फुल मीटिंग में, पूरे सहमति के साथ बोले गंगा में फेंक दिया जाए, पूरा दुर्गति हो, उनको जलाएंगे नहीं, दफनाएंगे नहीं, फेंकेंगे नहीं, गंगा में डाल दो, जाए दुर्गति हो पर लोग अभी के लोग सुतगति हो जाएगा उसका। लेके गंगा में फेंक दिया और आपने शांति में आके बैठे, और जैसे गंगा पानी में तो समाधि तो भरा जाए, और जाके उठकर दूसरे पार गए। अब जाकर किसका घर में ठाकुरबाड़ी था, वहां रह करके बस अपना भजन किए, उनका ठाकुरबाड़ी के अपन साथ वहां मिला, बढ़िया चकाचक रहे, वहां क्लास कर रहे थे, वहां मॉर्निंग क्लास कर रहे थे। तो वहां एक घटना हुआ था, एक ग्राम है हरि नदी करके, उस गांव में हरिदास ठाकुर क्योंकि इतनी बढ़िया से प्रवचन देते थे, लोग सभी आते थे सुनने के लिए, बहुत लोग पूरा पब्लिक आते सुनने के लिए। तो ब्राह्मण लोग को जो देखने से गोसाई जुहार करते हैं लोग, अब कोई गोसाई के जुहार करने के लिए, बड़ा गोसाई तो वह है, हरे कृष्ण बाबा आ गया। अब सारे लोग उनको प्रणाम करते, तो ब्राह्मण लोग डरे, भाई ये कहां से आ गया यार, हमारा मार्केट डाउन, उनका मार्केट चल गया, पूछ नहीं रहे हमको। अब गए, अब जाकर के उनके पास एक सभा किए, कौन से फॉल्ट तो पकड़े ना, क्या गुण है, कोई क्रिटिसाइज करेंगे, कोई गुण नहीं, अवगुण नहीं दिखता, ढूंढ ढूंढ करके सारा ब्राह्मण समाज में ए अवगुण उनको मिला। क्या अवगुण, वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे ही आवाज करके वो नाम जप कर रहे थे। बोले ये कहां से आ गया, उच्च स्वर में नाम जप कर रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है, महापाप है। बोले हमारे ठाकुर सोते हैं, चार महीने तो सोते हैं, तुम डिस्टर्ब करता है। हाँ, ठाकुर जग जाएंगे सबको गलत होगा, ये होगा, बड़े कंप्लेन किए उनको। और एक भारी ब्राह्मण सभा बुलाए, ब्राह्मण सभा पंडित सभा बुला करके उनको हरिदास को बैठा करके बोले ये बताओ ये कहां से तू आ गया, प्रमाण कर बताओ, क्यों ऐसे मन मन में चुपचाप लेने से नहीं होगा, ऐसे करो, ये क्यों आवाज करके हरे कृष्ण करता है, ये कौन सा है, सबको डिस्टर्ब कर रहा है, हम डिस्टर्ब हो रहा है, ये शास्त्र विरुद्ध बात है, पाप है ये के। और ब्राह्मण मिलकर के सब चिल्ला करके बोलने लगे कि गलत क्यों कर रहा है अपने ऐसा। तब हरिदास को पूछे, जब हरिदास जी बोले देखो मैं तो अनपढ़ मुसलमान हूं, हिंदू तो पढ़ शास्त्र पर तो पढ़ा नहीं, आप लोगों से ब्राह्मण पंडित से थोड़ा बहुत सुना हूं, कहीं इधर उधर सुना हूं, सुन करके मुझे इतने समझाऊं, मैं बोलता हूं सुनिए। बोले कोई अगर उच्च स्वरूप में जप करता है, भल्ली में दे करके ज्यादा भल्ली में जप करता है, और जो नौ भल्ली में जप करता है, वो नौ भल्ली में जप करने में जितने परिणाम, उसका 100 गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा जो भल्ली में से जप करता है। ब्राह्मण लोग स्ट्रेट उनको निंदा, बोले ऐसे कैसे बोलता है, क्या प्रमाण है, कैसे बोल सकता है, आवाज करके बोलने से इसे फल मिलेगा। तो हरिदास जी बोले, बोले देखो 84 लाख प्रकार के जीव जो नहीं है, सभी का जीवा तो है, बोले हाँ सबका जीवा है, लेकिन हरिनाम क्यों ले पाता है, केवल मनुष्य के अलावा कोई नहीं ले सकते। अरे मनुष्य में भी तो आधा पद नहीं लेते हैं, तो कुछ कुछ मनुष्य लेते हैं। बोले जीवा सबका है, लेकिन इतने महापवित्र इतने फलदायी भगवत नाम कौन ले पाता है, नहीं ले पाते हैं, लेकिन ले भी नहीं पाएंगे। जितने बाकी पशु पक्षी कीड़े मकड़ों के भगवान नाम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं बिचारे का, वो जीवा होकर भी नहीं ले सकते हैं, ये उनका परम दुर्गति है। तो उनका उद्धार कैसे होगा, बोले कान तो है ना, अगर सुनेंगे हरि का नाम तभी उद्धार हो जाएगा। अरे केवल कीड़े मकड़े जो नाम नहीं पाते उनका नहीं है, ये जो जड़ पदार्थ है उनका भी उद्धार हो जाएगा, वो अगले जन्म चेतन बनेंगे हरि नाम उद्धार। तो इसीलिए शास्त्र में कहा गया भल्यम दे करके अगर फुल भल्यम में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे ही साउंड देकर जो जप करेगा, अरे अनेक अनेक शत शत गुना फल मिलेगा उसको। क्योंकि बोलेंगे आप समझ नहीं, कैसे ना, आप अपने परिवार पोषण करते हैं चार आदमी का, और किसी ने सकड़ो परिवार को पोषण करता है अपने कमा करके, तो किसको आप बोलेंगे अच्छा है करके, अरे जो सकड़ो फैमिली मेंटेन करता है ना। ठीक इसी प्रकार आप चुपचाप मन में करेंगे आपका भलाई कल्याण हो सकता है कि नाम स्मरण कर रहे हैं, लेकिन जो उच्च स्वर नाम जब करेंगे आपका तो होगा ही, प्लस जितने आजू बाजू में जड़ चेतन सभी के भलाई होगा, कल्याण उद्धार होगा। तो इसीलिए सत सत गुना शास्त्र में फल बता गया उनका, यह अच्छा ही। उसको सुन करके पूरे सारे ताली बजाए, वाह 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 बढ़िया प्रमाण देकर बात बता, अरे वो ब्राह्मण चल गया ईर्ष्या से, बोला अरे मेरा तो बिल्कुल आउट कर दिया मुझे, बोला ऐसे नहीं चलेगा, तू मैं जो बात कर रहा है ये कहां से मनगढ़ंत बात सर कर रहा है, उसका कोई प्रमाण है, ऑथेंटिसिटी है, ए सर मनगढ़ंत बारे यारे, ये मैं शास्त्र में पढ़ा हूं, ब्राह्मण बोला शास्त्र में पढ़ा हूं, कलिजुग जब घोर कलिकाल आएगा तब क्या होगा, न शूद्र वेद बखाने का, शूद्र ही फिलोसफी पढ़ेगा, हाँ वेद व्याख्यान करेगा, अरे ये तो युग के अंत के बाद युगारंभ में दिखाई पड़ रहा है, अभी तो कलिजुग की शुरुआत हुआ है, ये 500 साल पहले की घटना है, अभी से तू कर रहा है मुझसे, हमको सिखा रहे, हम मिश्र ब्राह्मण है, देख कान में डाले हैं, नाक में डाले हैं, वो सब डाले हैं, अब तुम हमको बता रहा है शास्त्र व्याख्या, हमको सुना रहा है पंडित सभा में, हाय हाय घोर कलिकाल, घोर कलिकाल के प्रभाव और कुछ नहीं, देखो हमारा सामने शास्त्र बात कर, हमको समझा रहा है हरि नाम के बारे में। अब ऐसे कहा, कह खूब चिल्ला चिल्ला कर बोला, बोला देखो मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं आपको, 3 दिन के टाइम देता हूं, अगर तीसरे दिन के अंदर मुझे शास्त्र प्रमाण के साथ अगर पक्का नहीं उदाहरण दे पाया, सभी के सामने मीटिंग में तेरे नाक और कान काटूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं ऐसे ब्राह्मण हूं। और जनेऊ डाल करके ऐसे कहा, हाथ में जनेऊ हाथ में ले करके लोही बाजार से खरीद के लाया होगा, लगे डाल दिया उसको डाल करके हाथ में। अब बोलता है, अब वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, राक्षसम कलिमास्त्य जायन्ते ब्रह्मजोनिषु। जितने ब्राह्मण राक्षस गण है वो सब ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं कलिजुग में, ये शास्त्र वचन है। जितने ब्राह्मण है बोलते हैं कि राक्षस लोग सब ब्राह्मण जन्म में प्रकट होते हैं, तो आगे कहते हैं कि नहीं सब ब्राह्मण नहीं है, कुछ ब्राह्मण। बोले जो ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मण जाति होकर वैष्णव नहीं हुआ, बोले उनको तो प्रणाम भी मत करो। दान दक्षिणा देने का तो रू बात है, जो ब्राह्मण भोजन कराता ना बुलाकर खिलाते हैं और दक्षिणा भी देते हैं कुछ वस्त्र, बोले उसकी दूर बात है, प्रणाम ही करने से पाप लगेगा, देखने से स्नान करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को जो ब्राह्मण जेनी तो डाला मोटा, न न न खिया वाला, न धागा वाला जेनी डाला, लेकिन वैष्णव नहीं है तो उनको देख करके प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। हाँ, ये आप बोलेंगे मैं बोलता हूं करके, ये लिखते हैं देखें, ब्राह्मण है या यदि अवैष्णव है तबे अर आलापई पुण्य जाय अक्षय। बोले ब्राह्मण होकर के जो वैष्णव नहीं होया उसके साथ बातचीत किया तो आपके पुण्य सारे खत्म, पुण्य खत्म हो जाए, यही बोलते हैं। ब्राह्मण है या यदि अवैष्णव है तबे तर आलापई पुण्य जाय अक्षय। उनके साथ आलाप किया, हरे कृष्ण कर दिया तो पुण्य गया, खबरदार। बहुत पंडित ब्राह्मण मिलेंगे इस जमाने, अगर उनसे बातचीत किया तो आपके पुण्य सारे जो इकट्ठा किए सारे जाएगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा सारे। तो ये बताते हैं, से भी प्राध हमेरा कत दिवस था कि अब, तो ही बता रहे हैं, ए सब अभिप्रेर स्पर्श कथा नमस्कार धर्म शास्त्रे सर्वथा निषेधे करिवार। बोले ऐसे विप्र, मतलब जो विप्र है ब्राह्मण नहीं है ना, ब्राह्मण है लेकिन वैष्णव नहीं है, उनके उनके साथ बातचीत करना, उनको नमस्कार करना, उनको सेवा करना सर्वथा धर्म शास्त्र से निषेध कहा गया, निषेध कहा गया ऐसे पंडितों के। तो इस प्रकार के ये अधम ब्राह्मण था, वो जुक्ति करके हरिदास ठाकुर को बड़ा डाउन करके ये करना चाहता, और करके जब उसने किया तो उन्होंने हरिदास ठाकुर ने सभा पंडित सवार जोड़ दी, चुपचाप को तो ठीक है, आप जैसे दंड देंगे नाक कान काटेंगे काटेंगे, मैं क्या करूं, मैं जितना मेरे समझ में क्या, प्रणाम करके उठ के आ गए अपने कुटिया में भजन कर लिया। बाकी सारे लोग जितने सभासद वो भी कुछ नहीं बोले, ये भी सब राक्षस पापी थे सब, अरे इतने बड़े पाप हो रहा है उसको कुछ अपोज करो, ये कुछ नहीं किए। तो हुआ क्या, तीन दिन के अंदर जो बोला था ना, तीन दिन भी पूरा नहीं हुआ उसको कुष्ठ होकर के नाक गिर गया अपने आप, जो ब्राह्मण हरि ने दिखाऊंगा उसका ही नाक गिर गया, नाक चला गया, वो शर्म के मारे बाहर नहीं आता। जो आईना में देखा कि नाक गया, अब बताओ नाक कट जाए तो कैसे आप कभी देखो अपना नाक काट कर कैसे लगते हैं अब क्या कहूं, सुंदरता केवल स्वर्व्यंग स्वर्ग नाक, नाक से ही सुंदरता सुंदरता होता, नाक कटे तो गए बोलते नाक कट गया। भगवान ने श्री सुपर नखा का सुपर नाक काट दिए थे, नाक कटवा दिए थे कुरूप कर देते, तो ऐसे उनका नाक कट गया। अब जब हरिदास ठाकुर को वो आया नहीं बोलने के लिए, मीटिंग क्या करेगा, मीटिंग से होने से पहले ही उनका नाक कट गया अपने आप। तो लोग आकर बताया कि अब लोग सब समझ के बोले बाप रे बाप, वो तीसरा दिन नहीं हुआ पंडित जी का नाक कट गया, श्वेत कुष्ठ होकर के श्वेत में गल गया नाक, कोई काटा नहीं है, आपने आप घाव होकर सड़ करके गिर गया, नाक ही गिर गया, कोई काटे नहीं, ऑपरेशन नहीं किए। हरिदास ठाकुर बोले हरे 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 कृष्ण कहकर निकल गए, बोले मैं जाने दो। तो ये परिणाम, ये साक्षात घटना 5 साल पहले का है, वो तो भगवान के नहीं भगवान के भक्त है, भगवान के नाम की चर्चा जहां हो रहा था किसी भगवत भक्त ने कर रहा था, वो भी जाति ब्राह्मण वाले नहीं है, उनको जब अपमान कटु वाक्य कह दिया, ऐसे अपमान कर दिया तो 3 दिन के अंदर ही नाक गल करके निकल जाए, ये प्रमाण है। और साक्षात हाई टेंशन अव्यय परम ब्रह्म भगवान कृष्ण को ऐसे कोई कहे तो उनका क्या परिणाम होना चाहिए था। इसी के लिए युधिष्ठिर महाराज ऋषि मुनि परम आश्चर्य होकर के बोल रहे हैं कि नारद जी बताओ तो सही, ये क्या हो रहा है। अभी इस आश्चर्य के बाद और दोस्तों कहेंगे, उसके बाद नारद जी समाधान करेंगे। हरे कृष्ण।